भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम नंदनम अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक है भगवान परशुराम द्वारा विश्वों की खेतियों के विनाश। यह अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो 5 श्लोक तक मैं स्वयं इसको आवृत्ति करूंगा अनुवाद के साथ, 6ठा श्लोक हम समवेत इसको आवृत्ति करेंगे। श्रीसुकोवाच पित्रोपशिक्षितं राम तथेति गुरुनन्दन संवत्सरं तीर्थजात्रां चरित्वाश्रम आव्रजत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए स्वीकार किया ऐसा ही होगा। वो 1 वर्ष तक तीर्थस्थल की यात्रा करते रहे, तत्पश्चात वो अपने पिता के आश्रम में लौट कर आए। ऐसा होगा, कैसे होगा, क्योंकि प्रारंभ में पहले से आप सुन चुके होंगे क्या आदेश था, क्या आदेश। थोड़ा फैन बंद कर देंगे। जमदग्नि ने परशुराम को क्या आदेश दिए? हाँ, तीर्थ सदेवया चाहो जयंग अच्युत चेतन। भगवान को हृदय में लेकर के भगवत भावना से आप सारे तीर्थ की सेवन करो। क्यों क्यों ऐसे आदेश दिए? हाँ, राज्यों मूर्धाभिषिक्तस्य बद्ध ब्रह्म बधात गुरु, कहते उससे भी वो जघन्य है ब्राह्मण की वध से राजा की वध करना, ये बहुत जघन्य पाप है। ऐसा क्यों? हाँ, सर्व देवमय गुरु, ब्राह्मण गुरु सभी देवताओं के स्वरूप हैं, परंतु राजा को कहा जाता है भूदेव, ये भूमि पर वो देवता है, लेकिन वो साधारण देवताओं को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये देव शब्द है भगवान की प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जमदाग्नि परशुराम को कहें कि तुम भगवान को ही हृदय में धारण करके सारे तीर्थ की सेवन करो, तब फिर इस अपराध से, इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो परशुराम ने ऐसा कह करके, हाँ जैसा आप कहें ऐसा मैं करूंगा, कहते हुए उन्होंने एक साल तक तीर्थ यात्रा की। उसके पश्चात और एक कथा, परशुराम की प्रभाव की कथा कहते हैं। एक साल तीर्थ यात्रा करके जब परशुराम लौट करके आए तो क्या हुआ, कदाचित् रेणुका जाता गंगायम पद्ममालिनम गंधर्वराजम क्रीडम तम अप्सरो भी अपत्यत। कि एक बार जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने गंगा जल लाने के लिए गई थी, उन्होंने क्या देखी, पद्म मालिनम गंधर्वराज, जो चित्ररथ गंधर्वराज, जय श्री श्री राधा गिरिधर जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर माता की। गंधर्वराज चित्ररथम अप्सरा के साथ जब जल क्रीड़ा कर रहा था, क्रीड़ंतम अश्वरभि, तो रेणुका ने उसको देखी। विलोकयन्ति क्रीड़ंतम उदकार्थम नदिंगता होम बेलां न संस्मारं किंचित् चित्ररथं दुहां। यद्यपि वो जल लेने के लिए गंगा के पास गई थी, गंगा जल लेने के लिए, किंतु मन में उस गंधर्वराज को देख करके उनके मन में काम भावना उत्पन्न हुई रमण करने के लिए, परंतु वो समझ गई होम बेलम, अरे मेरी पति तो मुझे जल लाने के लिए भेजे थे कि अभी तो उनकी यज्ञ करने के समय अतिवाहित हो चुका है। तो इस कारण से तो क्या हुई, उनकी कालांतयं संविलोक्यं मुनिशापद संकिता, तो डर गई, मन में भय उत्पन्न हुई कि मुनि ने मुझे साप दे देंगे, क्यों समय बीत चुका है। आगत्यं कलशं तस्तु पुरोधाय कृतांजलि, परंतु अपने कांख में जल लेकर के, जल कलश को लेकर के खड़ी हो गई, किसके सामने, किसके सामने, जमदग्नि के सामने। तो मुनि ने अपनी पत्नी को देखे तो कैसे अवस्था में थी, उनकी पत्नी थर थर कांप रही थी। तो मुनि ने अपने अंतर्दृष्टि से देख लिए अपने पत्नी ने क्या किए हैं। व्यभिचारं मुनीर ज्ञात्वा पत्न्यां प्रकुपिता ब्रवीत, मुनि ने जान लिए क्या किए हैं, मुनीर ज्ञात्वा व्यभिचारं, मेरी पत्नी ने व्यभिचार किए हैं। ये इतना व्यभिचार गुरुत्वपूर्ण नहीं था, बड़े बात नहीं थी, लेकिन साधारण स्वभाव भी किसकी मन में ये भावना जागृत होती है, परंतु ये मुनि पत्नी है, वो सर्वदा स्वच्छ रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इसलिए ये मुनि पत्नी के लिए शोभनीय नहीं था कि मानसिक इस प्रकार व्यभिचार करना। इसलिए तुरंत जमदग्नि ने क्या हो गए, कुपित हो गए, एकदम गुस्सा से उनका आंख पूरा लाल हो गया, प्रकृपित, और तुरंत कहे अब्रवीत, घ्रंतो नं पुत्रकां पापम इतिक्तास्ते न चक्रिरे, अरे बेटे इनको मार दो, ये पापी नहीं है, इसको तुरंत मारो, सारे पुत्र को आदेश दिए। पुत्र इन पापी ने स्त्री को मार डालो, लेकिन बेटे ने उनके आज्ञा को पालन नहीं किया। अरे कौन ऐसा पुत्र होगा जो सोचेगा मेरी माँ को मैं स्वयं मर्डर कर दूं, ऐसा कभी है? और ये सब जी अशिक्षित हैं, कुलीन परिवार से जन्म लिए हैं, कोई ऐसा कर सकता अपनी माँ को मार सकता? इसलिए कोई पुत्र इस कार्य करने के लिए साहस नहीं जुटाए। परंतु जब जमदग्नि ने राम के ऊपर दृष्टि निक्षेप किए, परशुराम के ऊपर, और पिताजी के इशारे को वो समझ गए, केवल इशारे को नहीं, पिताजी के पास जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति को भी समझ गए, और राम ने अपने विवेक के आश्रय लेकर के वो कार्य किए। राम संशोधितं भाद्रोर्मात्रं सहाबधित। तो जमदग्नि ने यदि प्रत्यक्ष रूप से आदेश नहीं दिए इनको मारो, तुम्हारे माँ और भाइयों को मारो, परंतु संशोधिता अपनी माँ और भाइयों के प्रति पिताजी के जो क्रोध उत्पन्न हुई है इसको राम ने समझ के, इसलिए पिता भातृन मात्रा सहबधित, वो तुरंत अपने भाई के साथ माँ को भी बद्ध कर दिए। तो सब लोग इस श्लोक को उच्चारण करिए, लिखा है राम संशोधितः पित्रा भात्रोर् मात्रा सह अवधि प्रभावज्ञा मुनेः सम्यक् समाधे तपसश्च स राम संशोधितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहाबधि प्रभावज्ञा मुनेः सम्यक् समाधे तपसश्च स राम संशोधितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहाबधि प्रभावज्ञः मुने सम्यक् समाधे तपसश्च स राम संचोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहाबधि प्रभावज्ञा मुने सम्यक् समाधे तपसश्च स राम संचोदितः पित्रा राम संचोदिता पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहाबधि प्रभावज्ञ मुनेः सम्यक् समाधेर्तपसश्च स राम संचोदितः पित्रा भ्रातृन्मात्रा सहाबधि प्रभावज्ञः मने सम्यक् समाधिर्तपसस्तसं रामसंशोधिता पित्रा भातृन्मात्रा सहावधि प्रभावज्ञो मनिर्स्म्यात् समाधिस्तपसस्तसं माताजी राम संचोदिता पित्रा भातृन्मात्रा सहावधि प्रभावज्ञमने सम्यक् समाधिस्तपसस्तसं राम संचोदिता पित्रा भातृन्मात्रा सहावधि प्रभावज्ञमुनिः सम्यक् समाधिर्तपसस्तसं राम संचोदिता पित्रा भातृन्मात्रा सहावधि स्वभावज्ञो मने सम्यक् समाधिर्तपसस्तसं शब्दार्थ रामः परशुराम ने संचोदिता प्रोत्साहित किए जाने पर अपने भाइयों और माता को मारने के लिए पित्रा अपने पिता द्वारा भातृन सारे भाइयों को मात्रा सह माता के साथ अबाधि तुरंत मार दिए प्रभावज्ञ प्रभाव को जानने वाले मुने हैं मुनियों की अर्थात जमदाग्नि की सम्यक् पूर्णतया तपसा पहले है समाधे ध्यान से तपसा तपस्या से च भी सा वह अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद मेरे पीछे बोलिए जब जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अवज्ञाकारी भाइयों तथा मानसिक पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा दी परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों को वध कर दिए क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता की पराक्रम का ज्ञान था। तात्पर्य प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। परशुराम को अपने पिता की पराक्रम का ज्ञान था, अतएव उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हां भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे उनकी आज्ञा नहीं मानते तो वे साप देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम अपनी माता तथा भाइयों को पुनः जीवित दिला सकेंगे। उन्हें इसकी विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने की हानि भर दी। ओम अज्ञान तंद्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं तेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरु श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सादं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो बहुत दिन के बाद लगभग 3 महीने के बाद आज मेरा रोड़ में भगवान की वाणी को बोलने के लिए अवसर मिला है और आज में तो सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। श्रीमान कुंडल कृष्ण प्रभु मां लाल गोविंद प्रभु तो बड़े बड़े कथाकार हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है ऐसे भक्त समाज में ही इसकी रसास्वादन होती है, क्योंकि भागवतम में इसे केवल कथा नहीं है, इसमें बहुत मर्म है। इसलिए चक्रवर्ती पाद भक्ति रसामृत सिंधु से श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रीमद् भागवतम अर्थ आस्वाद्य रसिके सह। श्रीमद् भागवतम के जो शब्द के अर्थ हैं उसको ऐसे रुचि रखने वाले भक्तों के समागम से इसको आस्वादन करना चाहिए। ये जो प्रसंग चल रहा है कि परशुराम किस प्रकार अपने शक्ति के प्रदर्शन किए, क्योंकि भगवान के अनेक अवतारों के विषय में सनकादि ऋषियों ने पूछे थे और परीक्षित महाराज भी भगवान के अन्य अवतार के विषय में भी जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की। जस्य अवतार भूतानां क्षमाय च भवाय च। जो भगवान के जो अवतार हैं जो जन समाज को समृद्धि प्रदान करने वाले हैं और उनकी आवश्यकता को पूर्ति करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उस अवतारों के विषय में बोली। तो परशुराम भगवान के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार। तो परशुराम की उत्पत्ति के विषय बाद उनके जन्म के विषय में हम 15वां अध्याय में सुन चुके हैं, कि किस प्रकार एक ऋषि थे जिनके नाम था ऋचिक, तो तपस्या करने की बात उनके मन में विवाह करने की इच्छा हुई, तो एक सूर्यवंशी राजा गाधी के पास वो आए और उन्होंने उनकी एक कन्या सत्यवती को प्राप्त करने के लिए राजा से याचना की, परंतु गाधी ऋचिक ऋषि की इस प्रकार याचना को अंदर से प्रत्याख्यान करना चाहते थे, परंतु बाहर से ऋचिक मना कर देने से ऋषि को, तो निश्चित रूप से मैं साप की भागीदारी बनूंगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा एक ट्रिक किए, उन्होंने कहा है कि ऐसा मुझे कुछ घोड़ा चाहिए जिनकी एक कान सफेद और एक कान काला हो। तो ऋचिक तो समझ गए कि जिस प्रकार मांधाता के पास सभरी मुनि ने गए थे उनकी एक कन्या मांगने के लिए, तो राजा ने सभरी मुनि की प्रभाव को नहीं देखा, यह ना प्रभावज्ञा ये शब्द भी हम चर्चा कर सकते हैं इसके साथ। मनुष्य को अच्छी तरह से सभी विषय में ज्ञान होना चाहिए सम्यक, नहीं तो हम संसार में धोखा खा जाएंगे। तो सवरी मुनि की याचना को मांधाता मुनि ने इसे कहे कि देखो, आपकी इच्छा है शादी करने का, और यदि कोई मेरी कोई लड़की शादी करने की इच्छा कर ले तो कर लेना, क्या है, मेरे को तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपने बेटियों को कहूं और फिर मेरी बेटियों ने प्रत्याख्यान कर दें तो आपको भी अपमान होगा और मेरी जो मर्यादा है राज मर्यादा वो भी उल्लंघन होगा, तो इसलिए आप स्वयं जाकर के मेरी बेटियों से पूछ लीजिए, कोई यदि आपको विवाह करने के लिए इच्छा करें तो कर लेना। तो सवरी भी समझ गए राजा के क्या इच्छा, तो सवरी ने अपने को ऐसे सुंदर राजपुत्र के रूप में प्रस्तुत किए जोग बल से, तो उनकी 50 की 50 लड़कियों ने कहा कि हम शादी करेंगे आप, और सवरी मुनि एक्सेप्ट कर लिए सबको। तो उसी प्रकार राजा गाधी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए ऋचिक ऋषि ने वरुण के पास जाकर की कितनी 500 घोड़ा ना कितने घोड़े की रचना के थे 1000 घोड़े वो लेके आ गए और उनकी सुंदर कन्या सत्यवती से उन्होंने पाणी ग्रहण किए विवाह किए। उसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किए, क्योंकि ऋचिक ऋषि ब्राह्मण थे, तो उनकी सास अर्थात गाधी की पत्नी सत्यवती की मां वो भी सोची कि मुझे भी ऐसे आप पुत्र भी चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए, वो ब्राह्मण पुत्र की चाह नहीं की थी परंतु अच्छे पुत्र की कामना की, तो इसलिए अपने दामाद से ज्वाइन से उसने प्रार्थना की कि मेरे लिए भी एक चरु यज्ञ से बनाइए, मुझे भी ऐसे पुत्र चाहिए, तो अपने पत्नी के लिए अलग और अपने सास के लिए अलग चरु बने। और जमदग्नि कहे कि मैं अभी स्नान करने के लिए जाऊं तो आप भी पूर्वक ये चरु की सेवन करें, तो दोनों सास और अपने पत्नी को आदेश दे के चल, परंतु जब स्नान करने के लिए ऋचिक ऋषि चल गए उस समय सत्यवती की मां ने सोची कि मेरी बेटी के लिए उनकी पति जो बना के दिया होगा, क्योंकि पति अपने पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो थोड़ी साथ से इतना किया होगा इसलिए उनकी चरु बहुत उत्कृष्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपने चरु मुझे दे दो और मेरी चरु आप ले लो, एक्सचेंज कर दी। और बेटी तो मां की बात तो सुनना पड़ेगा ना, तो जब से किए और ऋचिक ऋषि को ये जब बात पता चला स्नान करके आने के बाद, तो उन्होंने कहा अरे क्या अनर्थ हो गया कि तुम्हारे पुत्र एक घोर क्षत्रिय बनेगा और तुम्हारी मां की जो पुत्र है तो वो एक ब्राह्मण बनेगा। क्यों? नहीं, ब्राह्मण की बनी हुई चरु को धारण की। तो उसके बाद जैसे भी हो तो सत्यवती अपने पति से प्रार्थना की ताकि ऐसे मेरी पुत्र ना हो, कम से कम मेरी पुत्र को आप ऐसे सदाचारी ब्राह्मण बना दीजिए, उनकी पुत्र की पुत्र ऐसे हो सकता। तब फिर जमदग्नि ने सॉरी ऋचिक ने सत्यवती को एक सुंदर पुत्र दिया जिनका नाम था जम अग्नि। जो जम और संजमन में परिपक्व थे, बहुत नियम कानून को कड़ाई से पालन करते थे, संजमित इंद्रिय वाले थे जमक अग्नि। तो जब उनकी ऐसे पुत्र हुआ परशुराम, ये शायद 6 भाई थे और परशुराम वो 6 भाइयों में से सबसे छोटा था। तो रेणुका अपने पति की जो अग्निहोत्र यज्ञ है, हर गृहस्थ को उस समय करना पड़ता था अग्निहोत्र यज्ञ, तो जल लेने के लिए जब गई थी तो गंधर्वराज चित्रसेन तो अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो उनको देखकर के स्वाभाविक प्रत्येक जीव के अंदर जो काम बसना है ये दर्शन करने मात्र से ही उत्पन्न होता है, ये 6 प्रकार के दोष है। इसलिए संयमित पुरुष को बच करके रहना चाहिए। अजामिल इतनी बड़े धार्मिक पुरुष था, सब वैदिक ज्ञान में परिपक्व था, परंतु एक बार उस शूद्र के साथ उस वेश्या के समागम को देख करके उनके मन विचलित हो गए। ये स्वाभाविक है, परंतु जब रेणुका को यह महसूस हुई अनुभव की मैं बहुत गलती कर दी, क्योंकि एक तो मैं पानी लेने के लिए आई थी मेरे पति के यज्ञ अग्नि के लिए अग्निहोत्र के लिए, तो ये भी मैं समय पर नहीं पहुंच पाई, और दूसरा मेरी मन में तो कुवासना जागृत हो गई, क्योंकि चित्र रथ के साथ क्रीड़ा करने के लिए मन में भावना उत्पन्न हुई। तो इसलिए खुद अपने को पश्चाताप करती हुई अपने पति के पास खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो अगले अध्याय में सॉरी अगले श्लोक में, तो श्लोकों के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे जमदग्नि हो वा परशुराम हो, कोई कर्म के नियम को इतने जल्दी उल्लंघन नहीं कर सकते। कर्म की गति बहुत गहराई है, गहनाम कर्मणाम गति। इसलिए अपने पत्नी को माफ न करने के कारण जदियो स्त्री वृद्ध और बच्चे इनके स्वाभाविक है कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, परंतु धैर्यवान और विवेकी पुरुष को इस सब कार्य के लिए गलती के लिए उनको माफ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है खुद पाप की भागीदारी बनता है, जो जमद अग्नि को भोगना पड़ा। इसी कारण से सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्र वहां करके उनकी गले काट दिए और ऐसे मां को बद्ध करना और भाइयों को बद्ध करना यदि वो शास्त्रिक विधि नहीं है, परंतु परशुराम वो जानते थे अपने पिता की शक्ति, किस प्रकार शक्ति, समाधेर तपस्य समाधि अर्थात उनकी बुद्धि जो एकाग्र बुद्धि है समाधि। और कैसे जानते थे, मैं कहते सम्यक अच्छी तरह से उनको ज्ञान था, प्रभाव प्रभाज्ञ। तो इसलिए उन्होंने उनके मां और भाई को बद्ध किए। परंतु इसकी भी परिणाम, इस कर्म की परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। जो कि उनकी पिता ने उनको कहे कि पहले तो राजा को मार दिए थे, तो फिर उनके पिता ने कहे कि इस प्रकार जो बद्ध है ब्रह्म हत्या से भी अधिक जघन्य है, तुम तीर्थ यात्रा करके इस पाप की प्रायश्चित करना चाहिए। परंतु इस प्रकार मां को बद्ध करने से उनको एक मन्वंतर के लिए उनको सप्तर्षि मंडल में स्थान नहीं मिला। ये है कर्म के रहस्य। और जब जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिए, अरे बेटो तुम्हारे पापिनी मां को माफ कर, तो दूसरे पुत्र ने नहीं किए। ये मर्यादा रखने के कारण फिर उनको जीवन मिला। कभी कभी मर्यादा भगवान के लिए ही तोड़ा जा सकता है। भगवान ने कहे कि युधिष्ठिर को कि आप बोलिए अस्वस्थमा हतम, लेकिन ये बोले नहीं। लेकिन भगवान के आदेश को पालन करते तो मर्यादा उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को सम्यक ज्ञान अच्छी तरह से जानना चाहिए। जिस समय कंस ने रथ लेकर के जा रहा था अपने बहन और बहनाएं को बैठा करके बहुत आनंद से, जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने तुरंत अपने तलवार निकाल लिया और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। परंतु वसुदेव ने अपने विवेक और विचार से कंस को समझाने लगे कि अभी इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इसी प्रकार ट्रिक की है। उन्होंने कहे कि सांप ना मरे लाठी भी ना टूटे। तो लोग कहेंगे फिर लाठी का क्या आवश्यकता है, फिर सांप का क्यों? तो लाठी तो इसलिए है कि सांप को मारने के। कहते नहीं, काल निर्धारित करता है किसको किस समय मरना है, काल निर्धारित करता है। इसलिए काल ही बहुत बलवान है। और काल के स्वरूप कौन है, भगवान कहते कालो अस्मि, मैं ही काल हूं जो सबकी भाग्य को मैं निर्धारित करता हूं। इसलिए वसुदेव ने कहे पुत्रान समर्पयिष्यामि जब उत्थितम भयम। तो भय शब्द को ऐसे बोले अभय, जिससे आपको कोई डर नहीं है उन पुत्रों को मैं आपके हाथ में सौंप दूंगा, परंतु उस पुत्र को नहीं जिससे तुमको डर है। परंतु कंस नहीं समझ पाया, उन्होंने भगवान के लिए ही सारे वचन को तोड़ दिए, परंतु सत्य भी रक्षा की लौकिक दृष्टि से कि जो वचन दिए थे पुत्रान समर्पयिष्यामि तो पुत्रों को तो दिए, परंतु जिसमें अभय है जिस पुत्र से आपको डर नहीं है उन पुत्रों को दूंगा, तो उन पुत्रों को दे दिए। परंतु जिससे डर है वो पुत्र को मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकता। इसलिए एक प्रकार लौकिक रीति से सत्य को भी रक्षा किए और भगवान के लिए सब कुछ भी तोड़ सकते। परंतु अन्य दृष्टांत से हम जब देखते हैं कि सौभरी और ये मानधाता, तो ये सौभरी ऋषि के प्रभाव को नहीं जानते थे कि सौभर ऋषि कितनी प्रभावशाली है। ऐसा नहीं कि वो ऋषि तो कंगाल हैं, कहाँ उनके पास पैसा है और चेहरा भी कैसे दिखता है, बुढ़े जैसे, हाँ उनको कौन शादी करके सुखी में रहेगा मेरी कन्या। इसलिए माता को देख सोहरी को देख करके मांधाता ने मना कर दिया। परंतु जब वो बाद में देखे कि अरे ऐसे बुढ़ा क्या ऐसे जवान बन सकता है, और एक नहीं उनकी 50-50 लड़की के भरण पोषण किया, परंतु कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं गए पैसा कमाने, अपने जोग शक्ति से प्रभाव। अर्जुन जब पहले अपने स्वजन संबंधियों को देखा, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है, ये योग्य नहीं है कि मैं इस युद्ध में अपने स्वजन संबंधियों को करूं। तस्मा न अरहं वयम हंतुर धातराष्ट्रम सुबांधवान, ये बंधु है, बांधव है, इनको हत्या करने से वास्तविक धर्म नष्ट होता है, पाप बढ़ता है, ये धर्म क्षेत्र है ना, धर्म के स्थान है, ये उचित है कि हम स्वजन नहीं कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। हे माधव लक्ष्मीपति, आप बताइए कि स्वजन संबंधियों को मारकर की कोई सुखी हो सकता है? ये लोग तो लड़ने के लिए आ गए हैं, क्यों ना, ये व्यक्तियों को पता नहीं है, यद्यपि न पश्यंती लोभ अपहत चेतसा, व्यक्ति की बुद्धि और विचार कब नष्ट होता है, कब वो अज्ञ बन जाता है, जब लोभ में बसती हो जाता है, उसी समय वो विचार नहीं कर पाता है, उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाता है। ये लोभ ही काम की रूप है, काम एस क्रोध एस, फिर लोभ एस, ये भी लोभ की रूप है, क्योंकि ये तीन एक साथ उत्पन्न होता है, काम क्रोध तथा लोभ। इसलिए व्यक्ति हमेशा ही परिणाम को देखना चाहिए, जिस कार्य की जिस कर्म के परिणाम को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसको देख लेते हैं, तो व्यक्ति फिर अपने विचार से कार्य करता है। इसलिए किं कर्म किं अकर्म कब्य अत्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जत ज्ञानत्वा मुख्य से सुभा, अदरवाइज लोक बंधनम, यदि भगवत इच्छा संपन्न कर्म नहीं हो तो निश्चित रूप से हमको बंधन में डालेगा। ये बंधन क्या है? जीव की दूषित चेतना जो भौतिक शरीर को बार बार प्रदान करता है। तो अर्जुन ने ऐसे तो कहा कि मैं स्वजन संबंधी को नहीं मारूंगा, परंतु सरेंडर भी किया, लेकिन उसके पास पूर्ण सरेंडर नहीं था, उस समय भगवान को अच्छी तरह से नहीं जानता था कि वो मुझे मार्गदर्शन पूरी तरह से करें। आप लोग कह सकते कि अर्जुन ने तो कहा शिष्य स्तेहं साधी, मैं आपकी शासन को मानने के लिए तैयार हूं, स अधिक और प्रपन्न, मैं आपके आश्रित हूं, तो कैसे शरणागत नहीं है? कभी जैसे हम भक्ति में जोड़ते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से भक्ति के रहस्य को समझ गए हैं, वह भगवान की महिमा को जान गए हैं, हमको देख करके कुछ कोमल श्रद्धा उत्पन्न हुई है, ये परिपक्व श्रद्धा नहीं है। आदो श्रद्धा जो कहा जाता है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, ये एंट्री फी है, परंतु ये परिपक्व श्रद्धा नहीं है। नहीं तो फिर कपिल देव क्यों कहते हैं श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, सत्संग के बाद सतन प्रसंगान मम वीर्य संवित, उसके बाद फिर श्रद्धा उत्पन्न होता है। तो अर्जुन की जो श्रद्धा थी वो कोमल श्रद्धा, परिपक्व श्रद्धा नहीं तो फिर आगे क्यों, जब भगवान ने अपने विभूति की वर्णन करने के बाद और फिर विश्व रूप को प्रदर्शित किए, तो अर्जुन ने देखकर के कहा अरे ये कौन है आप बताओ, ये जो इतनी बड़ विराट रूप धारण करके आप मेरे सामने खड़े हुए हो, तो आप कौन है? तो भगवान ने कहे कालोस्मिन् लोक क्षयकृत् प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तु इह प्रवृत्तः ऋत्वेऽपि त्वन्नं भविष्यन्ति सर्वे। तो भगवान कहे कि मैं काल के रूप में इस सब को नष्ट करने में तुला हुआ हूं। लोक क्षयकृत् प्रवृत्तः, परंतु आपको छोड़कर कि इस युद्ध में पांडवों को छोड़कर कि ये युद्ध में जितने लोग हैं एकत्रित हैं ये मेरी काल शक्ति के द्वारा सब मरने वाले हैं। ऋत्वे त्वंग न भविष्यन्ति सर्वे जे अवस्थिता प्रत्यनिकेतु। तो फिर अर्जुन ने स्तुति किया, प्रभु मैं आपकी प्रभाव को नहीं जानता था। क्यों नहीं, मैं अभी तक भी समझा था कि आप मेरी सखा है, मेरी सारथी बन गए हैं, हम तो दोस्त हैं। मैंने तुरंत स्तुति किया, सखेति मत्वा प्रथमं जदुक्तम। मैं आपको सखा मान करके जो कुछ कहा हूं, क्या क्या कहा हूं, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादत प्रणयेन वापि। ये हो सकता है कि आपकी प्रभाव को न जानने के कारण क्या है, आप प्रति स्नेह प्रणय प्रेम हो सकता है, आपको मित्र मानने के कारण, आपकी कथाओं को मैं ठीक तरह, आपके गुण को मैं ठीक तरह न समझने के कारण आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया हूं। अजानतम महिमानम तब इतम, इसलिए तत्क्षमस्व मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो खाते समय, सोते समय, बैठते समय, विहार करते समय, जो आपकी महिमा को न जानते हुए मैं जो व्यवहार किया हूं को सबको माफ कर दीजिए। तत्क्षमस्व उस सबको माफ कर दीजिए। फिर अर्जुन ने 18 अध्याय में साफ कहता है, नष्टो मोह लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तत्प्रसादात्, ये भगवान की कृपा जब होती है तो ये अज्ञानता दूर होता है। नाशयामि आत्मभावस्त, ये शरीर को मैं समझना, ये जो आत्मभाव अज्ञानता है, तो भगवान की कृपा होने से नष्ट होता है। ज्ञान दीपेन भस्वता, तो भगवान इस प्रकार ज्ञान देते हैं। इसलिए भगवान की इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधक के पास क्या गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ज्यादा बंसी हैं, हम जानते हैं भगवान की महिमा। हम जब ऐसे सोचे, हम तो मंदिर के पास रहते हैं, हम तो रेसिडेंटल डिवोटीज हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते। तो जो नियर में रहता है वो हियरिंग नहीं करता है, नियर नो ईयर वो सुनता नहीं है। इसलिए भगवान उद्धव को कहे कि तुम्हारे समान मरे कोई इतनी प्रियतम नहीं है, न तदस्ति प्रियतमम आत्मजोनि न संकर, आपकी समान प्रिय मेरी पुत्र भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। तो भगवान की जो प्रिय होता है, भगवान उसकी कॉन्फिडेंशियल बात कहते हैं, बहुत गुह्य बात कहते हैं। तो इसलिए भगवान की प्रिय बनना चाहिए, डियर बनना चाहिए। डियर का मतलब है DEAR, डबल ईयर। तो कान से सुनना चाहिए, नियर होने से नहीं, सुनता नहीं किया जानेगा। तो इसलिए जब तक हम अच्छी तरह से इस भगवत कथा को श्रवण करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न न करें, तब तक ये कलमश नहीं जाने, धोएगा नहीं। निकाल एक लेक्चर सुनना था, वो कहें कि तीव्रेण भक्ति जोगेन, इस तीव्र भक्ति से ही वास्तविक कोई भगवान की आराधना कर सकता है। जजते पुरुषा परम, तो तीव्र भक्ति के अग्निस्ट क्या है, मंद भक्ति। स्लो, ये क्या है, जस्ट एपीरियंटली वैष्णव, तिलक लगा दिए, वस्त्र पहन लिए कि आश्रम में तो नहीं तो फिर प्रसाद भी नहीं मिलेगा, रखेंगे नहीं, मंगला आरती चल गए, लेट भी हो थोड़ा से जाके हाजिरी लगा देना। तो ये मंद भक्ति है, इस मंद भक्ति से कोई भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है, समय लगेगा। अकाम सर्व काम मुख्य काम उदार अधि तीव्रेन भक्ति योगे न जदेत पुरुष परम। ध्रुव महाराज की भक्ति देखा, तीव्रता, छोटा बच्चे होने पर वो माँ की आज्ञा को कल छोड़ो, नारद जी भी उनको टेस्ट करने के लिए आए, परीक्षा करने के लिए, कहते नहीं ऐसा नहीं चलेगा, यदि आप उस भक्ति करने के लिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते तो मैं एग्री हूं। और उन्होंने 4 महीना में इतनी तप किए, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिथम बेर, है ना, एक कई थे और बेर खा करके 3 दिन में, फिर 6 दिन में क्या करते थे पानी, फिर 12 दिन में एक बार हवा लेते थे, और 14 महीना में भी उस हवा को भी त्याग कर करके एक स्थानु बन गए पत्थर जैसे, और फिर 6 महीना में ये विश्व ब्रह्मांड की जो प्राण शक्ति को उन्हें एकाग्र कर लिए, जो तीव्र भक्ति 6 महीना के अंदर किए भगवत प्राप्त हो गए। हमको तो 6 महीना ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए, न्यू भक्त ट्रेनिंग कर ले, अभी 1 साल हो गए, कुछ लोग का आवृत्ति भी नहीं हो पाता है पूरा, परंतु ये तीव्र भक्ति गोपियों की तीव्र भक्ति है, भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किए। आर्ज्यम पथम च हित्व जदुष्ट जा सोजन आर्ज पथम च हित्व भेजुर मुकुंद पदवीं स्मृति वीर विमोक्यम। ऐसे दृष्टांत और कहीं नहीं है जिस प्रकार गोपियों ने त्याग किया। अर्थात इस भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के लिए व्यक्ति को बहुत तत्पर होना पड़ेगा। लेजी इंटेलिजेंस तो है, परंतु बुद्धि को सम्यक रूप से भगवत सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद बोले, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट इज फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। परंतु प्रभुपाद बोले, वी नीड लेजी इंटेलिजेंस, गधे की तरह काम करने के लिए नहीं है मनुष्य जीवन, ये तो ठीक है, परंतु भक्ति में हमको एक्टिव होना पड़ेगा, नो लेजीनेस। इसलिए इससे शास्त्र में बहुत सारे दृष्टांत हैं, हाँ ये समझना चाहिए कि वास्तविक हमें संसार के साथ कैसे समझता करके रहें, बाह्य लोको व्यवहार और अंतरे निष्ठा। इसलिए सम्यक विचार चाहिए। यदि शुक्राचार्य अपने बेटी की बात पर, हम देखते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है, अपने स्वजन संबंधी को रक्षा करने के लिए हम तुरंत सेंटीमेंट हो जाते हैं, अरे मेरी बेटा है, मेरे पति के साथ ऐसा झगड़ा किए, तो यदि ऐसा होता तो वसुदेव ने भी कंसों के साथ फाइटिंग कर देते, है ना, अरे मेरी पत्नी को तुम मार रहे हो, और साला तो था ही, गाली भी दे सकता था, अरे साला तुम ऐसे कर रहे हो। परंतु उन्होंने बुद्धि के आश्रय लिए, यहां तक विश्व प्रभाव जो राजा था असुर के राजा, तो अपने बेटी और शुक्राचार्य की बेटी के बीच में झगड़ा हुआ, तो शुक्राचार्य कटा रहे रे, ऐसे जजमान करना वो बेकार है, भले ही हम खेती से जो अन्न गिरता है उसको उठाकर ही खा लेना चाहिए, तो जब छोड़ के जा रहे थे तो वृषभ ने तुरंत समझ के कि मेरा क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है, तुरंत सारी एग्रीमेंट में वो एग्री हो गए कि ये सब करना पड़ेगा, हाँ सब ठीक, आपका बेटी को मेरी दासी, मेरी बेदासी बनना पड़ेगा, तभी भी राजी हो गए। और भी एक कथा है नामांकन में आगे आएगा, जो सुकन्या राजा जुवनास्को ना, जुवनास्को की पुत्री सुकन्या, तो उन्होंने एक बांबी में देखे अरे कुछ जुगनू जैसे दिखता है, वो कांटा में फोड़ दी। लेकिन कौन थे वो राजा? नहीं मुनि, हाँ चवन ऋषि। तो उनकी सारी माल मूत्र सब बंद हो गया, सारे सैनिक अरे अरे ऐसे कैसे हो गया, तो समझ के कुछ ना कुछ ऋषि के प्रति अपराध हुआ और तुरंत गए। और वो मुनि ने जब देखे कि इस प्रकार हुआ है, क्रोध तो निश्चित आएगा, परंतु राजा ने उसके प्रभाव को जानकर के तुरंत समित हो गए। आप जैसे कहो ऐसे करूंगा, जब इच्छसि तथा करो, भगवान ने जैसे अवसर दिए। तो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तबा, तो ये भी कहें कि आप जैसे आदेश करोगे मैं ऐसे करूंगा, परंतु ये मेरी एक पुत्री है, पहले वो ऋषि की मन लेने के लिए सेवन इसकी अपानी ग्रहण करे। ये जानते कि ऋषि इससे खुश हो जाए और ऐसा किए। और फिर ये सुकन्या ने वो भी समझ गई कि अभी मुझे पति के साथ कैसे एडजस्ट करना है, बूढ़ा पति तो है लेकिन उसके साथ एडजस्ट करना है, और जिसके कारण उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पति की जौवन भी प्राप्त हो गया। किसके कारण? अश्विनी कुमारी के कारण। इसलिए सद्भावना रखने पर सदाचार होता है, भावना को बदलना चाहिए। तो परशुराम के विषय में जो कहा गया है कि उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों को बद्ध करने की हां भर दी, इस कारण से क्योंकि अपने पिताजी की समाधि और तपस्या के बल को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए भगवत विज्ञान में निपुण होना चाहिए। भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगत्य जायते, बार बार इस विषय को चर्चा करने से इस भगवत विज्ञान, विज्ञान का मतलब है उपलब्धि, अनुभव, यह प्राप्त होता है। इसलिए कथा को हम ध्यान पूर्वक सुने और इस कथा को फिर विचार करें। विचार ही प्रधान है। क्या है भागवतम की बारहवां स्कंध की आखिरी जो श्लोक है, विचारणके परो चैतन्येर गुणेर कथा करह विचार, विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार। हम सुनते हैं कि अटेंडेंस जैसे फिर घर की काम है, लेकिन बार बार इस श्रवण के हबी बनाते के साथ साथ इस कथा को बार बार विचार भी करना चाहिए। जो कुछ सुने हैं, इसलिए हमारे जो आचार्य हैं सड़क गोस्वामी हैं, इसी बातें को बार बार बैठ करके सत्संग में विचार करते थे। नाना शास्त्र विचारणे को निपुण दे एक्सपर्ट इन एनालिसिस ऑल द शास्त्र। तो फिर राधा कृष्ण के लीला में चित्त लगता, इसलिए आलसी बनकर क्या इतने सिद्धांत को समझना है, चलो हम लीला में प्रवेश करते हैं, रासलीला सुनेंगे, भगवान की बाल लीला, मनोहर लीला है कथा, लेकिन कथा के साथ तत्व की निरूपण। तो हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है इसमें तत्व निरूपण हुई है, सत्य को समझने के लिए तत्व चाहिए, जिसको हम कहते दर्शन, फिलोसफी। रास्ता चलेंगे कहीं स्पेक्ट लगाने से नहीं चलेगा, आंख तो कम से कम पहले होना चाहिए, है कि नहीं? आंख नहीं है तो कैसे रास्ता चल सकते हो? तो उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, रास्ता पर चलने के लिए दर्शन की आवश्यकता है। पहला दर्शन है कौन सी दर्शन? दुख दोषानुदर्शन। ये संसार को अच्छी तरह से समझना है कि दुखालय मत्सतम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो फिर दूसरे दर्शन है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गिरिधर के दर्शन कर सकते हैं। भवता दर्शनं जस्मात् अपुनः भव दर्शनं, परंतु पहले क्या कुंती देवी ने प्रार्थना की? विपदम संतो, जब विपद और दुख आएगा उसको दर्शन करने की बात, तब फिर आपकी दर्शन होती है। इसलिए भगवत दर्शन इतनी इजी नहीं है। हाँ, वही हमको लगेगा बस बनी हुई एक मूर्ति है, बहुत सुंदर सजावट हुई है, लेकिन यही प्रभु अपने भक्तों के प्रेम की विनिमय करते हैं, उनके सारी भरण पोषण करते हैं, जोगो क्षमा बहामी हम। ये तभी दर्शन होगा जब उनकी तत्वों को अच्छी तरह से समझ करके पूरी तरह से सरेंडर से। और अर्जुन ने सरेंडर किया अठारहवां अध्याय में, और भगवान कहे माम एकम 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 शरणम, तो फिर अर्जुन हाथ जोड़ कर लेट गए। इसलिए इस विषय को जो कथा के रूप में दी गई है, परंतु इसके पीछे क्या है, कुछ शिक्षा है, लेसन। इसे नहीं कि ड्रामा पेंडल है, बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, हमको बहुत अच्छा लगा, परंतु जो ड्रामा के डायरेक्टर हैं, वो ड्रामा क्यों प्रस्तुत किया है उसको पता है, उसके पास ये विजन है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएंगे किस लिए ड्रामा हुई। हरे कृष्ण। किसकी कोई प्रश्न है? शिष्य जब सरेंडर होता है ना, गुरु आश्रय रहता है, कि वो जानता है कि उस गुरु से परे और कोई है नहीं, है ना, इसलिए उनको ही प्रधान देना चाहिए, क्योंकि वो उनको बचाएंगे। यदि अच्छी गुरु है, सदगुरु है, इससे भी गलत आज्ञा देने पर भी कभी कभी शिष्य की परीक्षा होती है, तो इसलिए सत शिष्य को कभी गुरु की आज्ञा को अवहेलना नहीं करना चाहिए। यदि वो सदगुरु है और वो सत शिष्य है, इसलिए प्रभावज्ञ कि प्रभाव को जानने वाले, गरुड़ और सरी, जटाई और सिंपति, है ना, दो भाई थे ना, तो वो सोचे अरे क्या ये सब ग्रह प्लैनेट है, हम तो बहुत दूर उड़ जाएंगे, परंतु सूर्य के प्रभाव को नहीं जानते थे कि सूर्य के पास जाएंगे तो हम जल जाएंगे, उड़ान भर दिए। वो सुने नहीं, दूसरे देवता भी कहे ऐसा मत करो, सूर्य के प्रभाव को नहीं रहे, हमारे जैसे वो ग्रह नहीं है, तो कहे कि हम चंद्र को तो पार करके आ गए, इसको पार किए तो क्या कर सकता सूर्य, लेकिन जब गया तो जल करके गिर पड़े। तो ऐसे ही यदि हम गुरु की प्रभाव, क्योंकि गुरु कृष्ण शक्ति से संपन्न है, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, उन्होंने भगवान से शक्ति प्राप्त किए हैं, इसलिए उनकी गुण अर्णव हैं, समुद्र की तरह हैं, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। केवल नहीं कि संसार दावा नड़ली ढलो को हम गा लेते हैं, लेकिन संसार के अनल को कैसे गुरु की कृपा बुझाता है, कि गुरु शक्ति संपन्न रहते हैं कृष्ण की शक्ति से, और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कोई यदि शक्ति संपन्न गुरु है जो अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, तो ये जानना चाहिए किसकी प्रभाव है, ये कृष्ण की प्रभाव है। नहीं तो ऐसे 70 साल के बुढ़ा कैसे एक जल जहाज में 1 महीना यात्रा करके हिप्पियों को हैप्पी बनाए, उनको नचा दे, भगवत प्रेम में सरोवर कर दे, ये भी प्रभाव को जानना चाहिए। तो उपाय ऐसे विचार करने पर ये श्रद्धा रहता है मिशन के प्रति। मिशन एक बाहर है, ठीक है, परंतु इसके अंदर क्या है, एक कवर है, परंतु मांग क्या है, इस विषय में चर्चा करना। तो गुरु कभी गलत शिक्षा का आदेश नहीं दे सकते, शास्त्र का अवहेलना करके, परंतु कभी कभी गुरु यदि शास्त्र को अवहेलना करते हैं शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को पालन कर लिया है, परंतु उसकी परिणाम गुरु को भुगतना पड़ेगा, शिष्य को नहीं। परंतु भगवत प्रसन्नता के लिए गुरु की आज्ञा को अवहेलना किया जा सकता है, जैसे बलि ने बलिदान कर दिया, अपने गुरु की आज्ञा को अवहेलना किया, क्योंकि जानते थे भगवान विष्णु। कभी कभी प्रत्यक्ष जब भगवत आदेश होता है तो उस समय गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया जा सकता है, परंतु गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करने से कोई परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। कोई शिष्य जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहे, जो हम जाते हैं बांके बिहारी के पास, कौन सा मंदिर है, राधा रसिक बिहारी, उनकी उपासक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी की, जो हरिवंद उनके शिष्य, तो उनको कहे कि भाई तुम पान मत खाओ, पान खाना ये एडिकेट्स नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे श्री जी प्रत्यक्ष रूप से देती हैं। तो गुरु की आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किए, तो गोपाल भट्ट कहे कि अभी आप आश्रम छोड़ सकते हैं, यदि आप स्वतंत्र हैं, गुरु के आदेश पर नहीं है तो आश्रम छोड़ दीजिए, चल गए। और ब्रज में के कौन सा जगह है, रेठोरा ना कौन सा, वो जमुना नदी के पास बैठ कर उन्होंने कुटिया बनाए और एकांत में भजन किए। सिद्धत थे, परंतु एक गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करने का क्या परिणाम। तो एक दिन डाकू लोग आए और सोचे बाबा ने बहुत माल मरा रखा है आश्रम में, तो गला काट दी धन लूटने के लिए। तो वो काटने के बाद सिर को जमुना नदी में फेंक दिए, परंतु ये सिर जीवित था, मरा भी नहीं। आप सोचिए वो इतनी पावरफुल संत थे, काटने के बाद भी उनके सिर मरा नहीं था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी परिक्रमा करके केसरी घाट में पैर धो रहे थे, तो देखे अरे पैर में क्या लग रहा है बार बार, वो सोचे कुछ पत्थर बा ये होगा, ये कुछ लग रहा है हाँ, तो इसको बार बार हटाते थे, लेकिन वो फिर बार बार आकर के आँख सिर लग जाता था पैर में। तो गोपाल भट्ट ने उठा दिए, जब देखे अरे इधर का मस्तक है, और वो बोलने लगा गुरुजी मुझे भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिला, अपराध करने के कारण। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको कहा कि अभी आपका भगवत यात्रा सुगम हो जाए, क्योंकि जो ही गुरु शक्ति देते हैं, आदेश देते हैं, तो फिर उनको मिलता है इंसान। ऐसे कई दृष्टांत हैं हमारे गौड़ीय परंपरा में, जो श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज, वो नुपुर ढूंढते ढूंढते कैसे गुरु परंपरा के द्वारा भगवत सेवा प्राप्ति होती है। वो नुपुर गिर गया था और वो समाधि में चल गए थे, तो 3 दिन तक वो आए नहीं शरीर में, तो सब लोग चिंतित हो गए, वीर हमीर आदि जितने सब राजा थे। तो फिर उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया सर, लगता है वो चल गए, प्राण उनका चल गया। तो फिर रामचंद्र कविराज ने, उन्होंने भी ध्यानस्थ शरीर में अपने गुरु जी पास गए, देखे कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, कि गोलोक धाम में राधा रानी का एक जो नाक की फूल होता है, क्या होता है ये नाक में पहनते हैं नाक फूल ना, क्या नथुनी, नथुनी वो गिर गई है, लेकिन वो 3 दिन तक ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो लीला है आध्यात्मिक शरीर में। तो फिर जब रामचंद्र कविराज पहुंचे तो गुरु से आज्ञा लिए कि मैं भी मदद करूं, तो जब वो ढूंढे तो वो उनको तुरंत उस कमल की पंखुड़ी पर वो नथनी गिरी हुई थी, तो उसको उठाए और अपने गुरु को दिए। और फिर गुरु जी ने किसको दिए, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना उनकी गुरु श्रीनिवास आचार्य की, तो फिर उन्होंने हैंडओवर किए कौन से मंजरी है, रूप मंजरी, फिर उन्होंने हैंडओवर किया राधा रानी। तो प्रोसेस है, यदि हम मानते हैं कि सदगुरु है, उनकी दीक्षा लेने के पहले हम विवेचना करना चाहिए, और सदगुरु को आदेश को कभी किसी भी हालत में उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनको क्रॉस करके दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। भले ही हम देखते हैं कि शास्त्र अनुमोदित नहीं है, परंतु ये कृष्ण की कुछ योजना जानकर के इसको करना चाहिए, वो जिम्मेदारी उनका। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंटल मैटर। ये कहते ना गुह्यम गुह्यतरम मया बिंदुसेन अशेष जब इच्छसि तत्कुर। तो ये गुह्य कॉन्फिडेंटल मोस्ट कॉन्फिडेंटल मैटर, तो इसको विचार करके करो। इसलिए कृष्ण ने अपॉर्चुनिटी दी, मैं आपको बता चुका हूं अभी तुम जैसे इच्छा करो ऐसे करो, लेकिन पहले से विचार कर लो क्या क्या करना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।